हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। गुजरात निमानी हाउस, करीब 11 AM। विहा अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी अपने सूट का दुपट्टा लगा रही थी। वही वेदांत सोफे पर बेचैन बैठा था। उसका मन कर रहा था वो विहा को रोक ले कि वो सिरोही वापस ना जाए, पर विहा ने जैसे जिद पकड़ ली थी। दरवाजे के पास अनाही और निवेदिता खड़ी थीं। वो दोनों भी खामोश थे, क्योंकि फिलहाल उन्हें भी पता था विहा को कोई नहीं समझ सकता है। अगर उसने एक बार जिद कर ली है कि उसे घर जाना है, मतलब जाना ही है। करीब आधे घंटे बाद वो सब लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर विहा को विदा कर रहे थे। उसने एक सूटकेस पैक किया था। विहा आखिरी बार अनाही और निवोदिता के गले लगकर मुस्कुराई और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जहां ड्राइविंग सीट पर पहले से वेदांत बैठा था। वेदांत उसे अकेले नहीं जाने दे रहा था, इसलिए बहुत मिन्नतों के बाद विहा इसलिए राजी हो गई थी कि वेदांत बस उसे छोड़ने ही वापस गुजरात आ जाएगा। उनकी गाड़ी जाने के साथ ही वहां रूहान की गाड़ी आकर रुकी थी। रूहान ने उन्हें जाते देखा और फिर उसकी नज़र अनाही पड़ गई, जो मुस्कुराते हुए उसकी गाड़ी को देख रही थी। रूहान ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर तेज़ कदमों से चलता हुआ अंदर आया। अनाही ने उसे देखकर आंखें छोटी करके कहा, आप कंप्लीट लेक्चर नहीं लेकर आए। ऐसे बीच में ही रूहान ने हल्के गुस्से में कहा, मुझे भूख लग गई थी, आज आपने टिफ़िन नहीं बनाया ना, बस इसीलिए मैं वापस आ गया। उसके ऐसा बोलने पर अनाही ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह रियली सॉरी, विवाह के चक्कर में मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई आपका टिफ़िन भी बनाना था। आप फ्रेश होकर लीजिए, मैं अभी लंच लगवाती हूँ। रूहान वहाँ से जा चुका था, और उसके जाने के बाद निवेदिता ने अनाही के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कई दिनों बाद रूहान को ज़िद करते हुए देखा है। पढ़ना, वो जैसे ऐसी चीज़ों पर तो गुस्सा होना भूल ही गया था। अगर कोई उसके लिए एफ़र्ट कर रहा होता है तो ठीक है, और नहीं कर रहा होता है तो वो उसे कभी एड्रेस नहीं करता है कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन वो तुमसे सब कुछ मांग लेता है, अपने लिए वक्त भी, खाना भी, और शायद कुछ और भी। अनाही ने निवेदिता का हाथ अपने सर से हटाकर अपने हाथ में लेते हुए उसे मजबूती से थाम कर कहा, बस थोड़ा सा शब्द करिए मम्मी जी, कुछ दिनों में आपका बेटा आपसे भी ठीक वैसे ही बात करेगा जैसे उसे करना चाहिए, और अभी अगर हमने लेट की तो फिर से गुस्सा हो जाएंगे, तो चलिए हम लंच लगवाते हैं। माधवी सोफे पर बैठी उन्हें देख रही थी। उसे जलन हो रही थी सास बहू की बॉन्डिंग को देखकर। उसे ये बॉन्डिंग अनाही की अपने साथ चाहिए थी, ताकि वो रूहान और उसकी डोर अपने एक हाथ से कंट्रोल कर सके, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो दोनों जैसे ही किचन में गईं, माधवी उठकर तुरंत ही रूहान के कमरे की तरफ चली गई। रूहान, जो अपनी रिस्ट वॉच हटा रहा था, कमरे में माधवी को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, गुड आफ्टरनून ताई जी, कैसी हैं आप? हम रियली सॉरी, कई दिनों से मैं जब से कॉलेज रिज़ाइन किया है, आपके साथ बातें करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। माधवी अंदर जाकर बेड पर बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा होता है, जब किसी नए शख्स की एंट्री होती है ज़िंदगी में तो लगता है पुराने वाले तो फिजूल ही हैं और उन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, पर तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इंसानों की परख नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी पत्नी के साथ रिश्ता ना बनाओ, पर पहले उसे परख को। रात को अनाही 2 बजे आई थी, मुझे बहुत घबराहट हुई ये सोचकर कि आने ड्राइवर के साथ आई थी, जबकि वेदांत तो नशे में धुत था, वो तो होश में भी नहीं था। भगवान न करे, लेकिन अगर कोई उच्च नीच हो जाती तो अनाही को बचाने वाला कोई नहीं था। दूसरे टाउन से अनाही अकेले यहाँ आई थी, वेदांत तो होना ना होना एक समान ही था। रूहान, जो जूते निकाल रहा था, माधवी की ये बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने हैरानी से माधवी की तरफ देखा, तो माधवी ने हल्के अफसोस भरे लहजे में कहा, और पता नहीं वेदांत और अनय के बीच रात को ऐसा क्या हुआ होगा कि वो आज वापस अपने घर चली गई है, वो भी गुस्से में लड़कर गई है। मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, उन तीनों को आपस में सब कुछ पता होता है लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं बताते हैं, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही बता देता हूँ। रूहान ने अपने जूते उतारे और फिर सोफे से उठाते हुए बोला, शायद मैडम जी ने कुछ सोचकर ही नहीं बताया होगा, मैं फ्रेश होकर लंच पर मिलता हूँ आपसे। इतना बोलकर रूहान ने कब्बोल से अपने लिए कपड़े निकाले और फिर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही माधवी ने गुस्से में अपने हाथ बेड पर पटकते हुए कहा, ये लड़का तो मैडम जी के नाम के नारे लगाने से बाज ही नहीं आ रहा है, उसे पर गुस्सा करने के बजाय उसी का पक्ष ले रहा है। माधवी को जब लगा उसका ये दावा भी नहीं चलने वाला है, तो उसने गहरी सांस छोड़ी और रूहान के कमरे से बाहर चली गई। कहीं रोहान शावर के नीचे भीग रहा था, ठंडे पानी की बूंदें उसके 8-pack ऐप से गिरती हुई बहुत अट्रैक्टिव लग रही थीं। रोहान ने अपने सिल्की बालों में हाथ घुमाते हुए अनाही के बारे में सोचा और अपने मन में कहा, मुझे नहीं लगता आपके और वेदांत भाई के बीच कुछ हुआ होगा, पर फिर भी ये सोचकर दर्द घबरा रहा है कि रात को आप कैसे भाई को संभाल कर यहाँ लेकर आई होंगी। भाई बहुत कम ड्रिंक करते हैं, जिसके वजह से ज़रा सी अल्कोहल भी उन पर हावी हो जाती है। मुझे तो ड्रिंक की आदत है, इसलिए बहुत ड्रिंक करने के बाद भी मैं होश में रह जाता हूँ, पर भाई वो तो सिर्फ ओकेजनली पीते हैं। रूहान बाहर आया और मिरर में खुद को देखते हुए धीरे से बोला, कैसे, मैं दिखता तो अच्छा ही हूँ, मैडम जी मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं? जैसे मैं उन्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं बोलता है, छोटी से छोटी डिटेल उन्हें कितनी याद रहती है। फिर जब रूहान ने याद किया कि अनाही उसके करीब आ रही थी, तब उसका दिल कैसे धड़क रहा था। उसने ना में 2-3 बार गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे इतनी अश्लील मैडम जी भी नहीं चाहिए, जो सीधा बोलते बोलते ही। रूहान बीच में रुक गया, कहीं डाइनिंग हॉल में लंच लग चुका था, इसलिए अनाही तेज कदमों से चलती हुई अब अपने कमरे की तरफ आ रही थी। उसने जैसे ही देखा कमरे से निकलकर माधवी आ रही है, उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने अपने मन ही मन कहा, हो ना हो रूहान जी को कुछ उल्टी सीधी पट्टी ही पढ़ाकर आई होंगी ताई जी, होप सो रूहान जी ने इनका साथ ना दिया हो। माधवी नैनाही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा लंच लग गया। अनाही ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी ताई जी, मैं रूहान जी को ही बुलाने आ रही थी। माधवी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसके पास से निकल गई और अनाही ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी सांस भरते हुए कहा, हिट टीवी सीरियल की विलेन वाली वाइफ देती है मुझे। अंदर जाकर अनाही ने देखा रूहान सोफे पर बैठा था, उसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे हुए थे। उसे ऐसा देखकर अनाही तेज कदमों से उसके पास गई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ, आपका सर दर्द हो रहा है क्या? आपको तो मैं लंच ही लेकर आ जाती हूँ, या डॉक्टर को बुला सकते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से रूहान के दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए अचानक ही उसे दर्द शुरू हो गया था। रूहान ने अनाही की तरफ देखते हुए कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे माइग्रेन है, मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, आप चलिए मैं आता हूँ। अनाही ने जिद करते हुए कहा, नहीं आप मेरे सामने टैबलेट लीजिए, फिर हम साथ में चलेंगे। रूहान ने हैरानी से अनाही की तरफ देखा, जो अब अपनी भूरी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे ही देख रही थी। हार कर रूहान उठा और अपने लिए टैबलेट निकालकर उसे लेते हुए बोला, अब ठीक है, अब चल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लंच टेबल पर बैठे थे।
विहा के बिना लंच टेबल थोड़ा सूना सूना लग रहा था, क्योंकि वो किसी न किसी की टांग खींचती रहती है। गाइस, मुझे कुछ एपिसोड के बाद न्यू कैरेक्टर लेके आना है, फीमेल। आप में से कोई नेम सजेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, थोड़ा सा यूनिक, जैसे अनाही है।